नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष होंगे। आज होगी निर्वाचन की औपचारिक घोषणा। विधानमंडल के दोनों सदनों में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और सरकार का उत्तर होगा। बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिन के गहन जागरूकता अभियान की हो रही है आज से औपचारिक शुरुआत। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव आज होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव ने उपाध्यक्ष पद के लिए कल नामांकन किया। उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। श्री यादव विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष होंगे। वे लगातार 2 बार विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि आज ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण पर सदन में चर्चा और सरकार का उत्तर होगा।
अब कल एक और महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया है, उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो गया है। आज सब सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, ताकि विधानसभा संचालन में उनका भी हमें योगदान रहेगा और लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा, जहाँ राज्य के 243 विधानसभाओं से चुनकर जो लोग आए, सबों का सम्मान है, सबों का आदर है। अगर और बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यशीलता नियमावली जो बनी हुई, उसी के तहत सदन का संचालन होगा, सबका सहयोग मिलेगा और सबको अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा। आज माननीय राज्यपाल महोदय का संयुक्त अधिवेशन के तहत अभिभाषण हुआ, या अभिभाषण का डिबेट होगा। डिबेट में नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सभी मान्य भाग लेंगे जाकर, और अंतिम होगा द्वितीय पूर्व बजट जो पेश होगा जाकर, उस पर चर्चा होगी जाकर।
विधान परिषद में भी आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानमंडल में प्रस्तुत 11 विधेयकों पर अपनी सहमति प्रदान की है। इनमें बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक, बिहार हिंदू न्यास विधेयक, बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त विधेयक, बिहार कृषि भूमि विधेयक शामिल हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कानून का राज बनाए रखना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। श्री खान ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान करेगी।
शुरू से ही सरकार का प्रयास रहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया था। अब तक लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर अब तेजी से काम किया जाएगा।
राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी।
2016 से महिलाओं को सभी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में महिलाओं के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चल रही है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की दर से राशि दी जा रही है। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है। शीघ्र ही शेष महिलाओं को राशि दे दी जाएगी। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।
विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट का आकार 91,717 करोड़ रुपए से अधिक का रखा गया है। बजट में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए 1,885 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान है। विधानसभा के चालू सत्र के लिए 5 अध्यासी सदस्य बनाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भाजपा के राम नारायण मंडल, जदयू के रत्नेश सादा, राजद के भाई वीरेंद्र, कांग्रेस के कमरुल होदा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ज्योति देवी को अध्यासी सदस्य बनाए जाने की घोषणा की है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सीनेट सदस्य और अन्य बोर्ड के सदस्य अब मनोनीत किए जाएंगे। इनके मनोनयन के लिए विधानसभा अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इस आशय का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। गौरतलब है कि विधानसभा के 10 सदस्यों का मनोनयन विभिन्न विश्वविद्यालयों के सीनेट में किया जाता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में पुलिस बल को बुनियादी सुविधा की मजबूती के लिए गृह विभाग ने 27 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि नवादा, समस्तीपुर और लखीसराय में आवास भवन और आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की विशेष अदालत आज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई सदस्य सहित अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय बाल विवाह मुक्त भारत के लिए आज से 100 दिन के गहन जागरूकता अभियान की औपचारिक शुरुआत कर रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
ये अभियान बाल विवाह मुक्त भारत पहल के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान पिछले वर्ष 27 नवंबर को शुरू हुआ था। 8 मार्च 2026 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन को मजबूत करने के लिए नागरिकों, संस्थाओं और सामुदायिक नेताओं को संगठित करना है। इस कार्यक्रम में बाल विवाह उन्मूलन की राष्ट्रीय शपथ, देश भर में आए बदलाव पर विशेष फिल्म और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के अनुभव शामिल होंगे। कार्यक्रम का सरकारी वेबकास्ट प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। 100 दिन के इस अभियान को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाद विवाद, निबंध, संवाद सत्र, दूसरे चरण में बाल अधिकार और संरक्षण से जुड़े संदेशों के प्रसार के लिए धर्मगुरुओं और प्रभावशाली नागरिकों को साथ लाने और तीसरे चरण में ग्राम पंचायतों और नगर पालिका वार्डों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
पछुआ हवा के प्रभाव से पटना सहित पूरे प्रदेश के तापमान में तेजी से बदलाव हो रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट आ सकती है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान पटना, शिवहर, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और गया सहित कई जिलों में सुबह और रात के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 8.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रेलवे ने दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व पर पटना साहिब स्टेशन पर 38 ट्रेनों का ठहराव करने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 19 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच इन ट्रेनों का पटना साहिब स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव होगा। बिहार पुलिस में सिपाही बहाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। 4361 चालक सिपाही पद के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। वहीं 19,838 सिपाहियों के लिए दूसरे चरण की शारीरिक जांच परीक्षा और प्रमाण पत्र का सत्यापन 15 दिसंबर से शुरू होगा। वर्तमान बहाली प्रक्रिया के अंतर्गत मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में दारोगा, परिवहन विभाग में प्रवर्तन दारोगा, गृह विभाग में कारा सहायक अधीक्षक और पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग में रेंज अधिकारी की बहाली के लिए भी लिखित परीक्षा इसी महीने होगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कटिहार जिले के 4 फर्जी नियोजित शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। कोढ़ा थाने में 1 जबकि आजमनगर थाने में 3 फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। इन सभी शिक्षकों पर गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी लेने का आरोप है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच हुई झड़प के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने ओपीडी और अन्य सेवाएं बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स के अंडर 14 एथलेटिक्स मुकाबले में बिहार के सूरज कुमार यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। सूरज ने 80 मीटर की दौड़ में यह सफलता प्राप्त की है। वहीं बालिका वर्ग की ऊंची कूद स्पर्धा में बिहार की यास्मीन परवीन ने कांस्य पदक जीता। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने विजय मर्चेंट अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में अरवल के यशराज बिहार टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि शिवहर के विवेक आनंद उप कप्तान होंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका खो खो प्रतियोगिता में मगध और सारण की टीम ने जीत दर्ज की है। अररिया के टाउन हॉल में कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। विभिन्न कला एवं प्रतिस्पर्धात्मक विद्याओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। अरवल जिले में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण प्रदान किए गए। इधर किशनगंज में एक भव्य कार्यक्रम में दिव्यांगों के बीच 35 बैटरी चालित ट्राई साइकिल वितरित की गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, महिला रोजगार, फ्री बिजली पर खर्च होंगे 27,000 करोड़, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश। दैनिक जागरण लिखता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में बदली तस्वीर, सामान्य श्रेणी से अधिक हुए आरक्षित वर्ग के छात्र। दैनिक भास्कर ने मोबाइल ऐप सर्विस लॉन्च से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बैकफुट पर सरकार संचार साथी ऐप अनिवार्य करने का आदेश वापस। प्रभात खबर ने अगले साल सरकारी स्कूलों में छुट्टी से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, अगले साल 75 दिन बंद रहेंगे सरकारी स्कूल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के 19वें उपाध्यक्ष होंगे। आज होगी निर्वाचन की औपचारिक घोषणा। विधानमंडल के दोनों सदनों में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और सरकार का उत्तर होगा। बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिन के गहन जागरूकता अभियान की हो रही है आज से औपचारिक शुरुआत। और पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जायेगा।